नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, और दिव्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए जो हम पिछले हमारे 5 सिटिंग से श्लोक ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इस अध्याय का, जहां भगवान अपने अवतरण के विषय में न केवल बता रहे हैं बल्कि ऐसा गुह्य एक संदेश दे रहे हैं, एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि यहां पर तो हम पिछले हमारे 5 बुधवारों से भगवान द्वारा कहे गए इस श्लोक के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां उन्हीं पर चर्चा किए हैं अब तक। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि भगवान के अवतरित होने के जो कारण हैं वो कितने गुह्य हैं और वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने सैद्धांतिक हैं। तो भगवान आकर जब अपनी लीलाएं करते हैं, यहां पर तो केवल भगवान बता रहे हैं कि मेरे अवतरित होने की वजह, अवतरित होने के पश्चात भगवान जब अपनी लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं में से भगवान जो सिद्धांत स्थापित करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि केवल जो बहुत दुर्लभ मनुष्य, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जो मुझे तत्वतः जानने की कोशिश करता है वही मुझे पहचान पाता है, और उसी व्यक्ति को मैं अपनी पहचान दिलाता हूं। तो आइए हम आज फिर से इसी सुप्रसिद्ध श्लोक की चर्चा प्रारंभ करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो यहां मुख्य मुद्दा जो हम हमारे इतने बुधवारों से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जब धर्म की ग्लानी होती है तो अवतरित होते हैं। ग्लानी का अर्थ है जब धर्म निर्बल पड़ जाता है, जब धर्म का अपमान होता है, जब धर्म को लज्जा समझा जाता है या शर्म आती है धर्म का पालन करने में, तो हम ये तीन अर्थ लिए थे ग्लानी के। तो हम एक रिकैप लेंगे, पिछले बुधवार धर्मस्य ग्लानी के संदर्भ में हमने क्या चर्चा की थी। भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में न कौन्तेय पुकारा, न धनंजय, न अर्जुन, और किसी नाम से नहीं, भारत याद है भगवान ने, बोलिए हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भारत ये शब्द का विच्छेदन यदि हम करें तो भा र और त, भाव ताल और राग, तो इसका अर्थ ये है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जिनके वंशज हो महाराज भरत, जिनसे तुमको ये नाम मिला है भारत, और हम लोग भी अपने आप को भारतीय कहते हैं, कि उन्हीं महाराज भरत के वंशज जिनके नाम से ये पूरा देश भारत कहलाया गया, अर्थात वो देश जहां पर भावना युक्त कर्म किए जाते हैं। तो भारत का संपूर्ण अर्थ ये कहा गया यहां पर, रथ का अर्थ है युक्त रहना, भावना से युक्त जो कर्म, और भावना यहां पर भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में। तो यदि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो अर्थ जान लें, उसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण से युक्त, उनकी भावना से युक्त हमारा जीवन, वो है भारती। तो क्यों भगवान ने अर्जुन को भारत कहा, क्योंकि महाराज भरत वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन जिस प्रकार से किए, एक राजऋषि होते हुए, न केवल राजा या न ऋषि बल्कि राजऋषि, अर्जुन यहां पर राजा का पद परित्याग कर ऋषि बनना चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे खून में नहीं है अर्जुन, तुम्हारे खून में तुम्हारे वंशज महाराज भरत, इनका खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है, जो कि राजऋषि थे, उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, वो भागे नहीं अपने कर्तव्य। उसके पश्चात हमने पिछले बार धर्म का एक उदाहरण हमारे श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है कि धर्म जो है वो भगवान श्री विष्णु का वक्षस्थल है, और जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार होता है, और इसके पीछे ये लीला हुई थी भृगु मुनि इनकी। तत्पश्चात ग्लानी के तीन अर्थ बलदेव विद्याभूषण जो देते हैं हमारे आचार्य, ग्लानी का अर्थ है एक निर्बलता, लज्जा, और तीसरा अर्थ है अपमान। तो भगवान आज के श्लोक में जो बोल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी, जब जब जहां जहां जिस स्थान पर धर्म निर्बल पड़ता है, जब लज्जित होता है और जब अपना अपमानित होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और निर्बलता के संदर्भ में हमने ये जो धर्म और अधर्म का महल है जो चार चार स्तंभों पर खड़ा है, मीट ईटिंग इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अधर्मा विच डिस्ट्रॉयज मर्सी, गैम्बलिंग दिस पिलर डिस्ट्रॉयज ट्रूथफुलनेस, इंटॉक्सिकेशन डिस्ट्रॉयज ऑस्टेरिटी, इलिसिट सेक्स डिस्ट्रॉयज क्लीनलीनेस। और इसलिए श्रील प्रभुपाद में इस्कॉन में हमको ये चार नियम दिए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, विच मीन्स बाय फॉलोइंग दीज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वी आर ऑटोमेटिकली फॉलोइंग मर्सीफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस एंड ऑस्टेरिटी। तो अधर्म की ग्लानी निर्बलता की वजह से होता क्या है? अधर्म क्यों लोग आजकल कलयुग में सहज रूप से पालन कर रहे हैं? बहुत सहजता से अधर्म किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और धर्म की जब बात आती है तो हर समय ढीलापन दिखाई देता है, बहाने, नकारता, ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन जिसके अंदर, तपस्या जहां पर है, नियम है, जहां पर अनुशासन है, अपने आप वहां पर रुचि कम हो जाती है बद्ध जीवों की। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेक्स वन रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट, ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन मेक्स वन पीसफुल एंड पेशेंट। और फिर फाइनली हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है धर्म का अपमान। तो यहां पर अर्जुन हताश होकर, जो उन्होंने गांडीव छोड़ दिया, और हम रामचंद्र जी का उदाहरण देखें तो रामचंद्र जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने सारे अवतारों में से जो एक ऐसे अवतार जो कि कर्तव्य परायण और कृपा परायण, रामचंद्र जी के विषय में एक बहुत सुंदर कथा अभी मुझे याद आई। रामचंद्र जी, युद्ध हो चुका था रावण के साथ, अब अयोध्या में वो अयोध्या पति बन चुके थे, अयोध्या नरेश। तो माता सीता रामचंद्र जी के पैर दबा रही थी और रामचंद्र जी के तलवों में एक कांटा चुभा हुआ था उनके। तो माता सीता वो कांटा निकालने की कोशिश कर रही थी, रामचंद्र जी ने मना किया, उसे मत निकालो। अब देखिए, साधारणतः जब हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले वो कांटा निकालते हैं, क्योंकि कांटा नहीं निकालेंगे तो चल नहीं पाएंगे, हर समय ध्यान वहीं रहेगा। यदि चले या न चले, बैठी भी रहें, कांटा अटक रहा है, कुछ तो अटक रहा है। रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा, मत निकालो उस कांटे को, उस कांटे ने मेरी चरणों की शरण ग्रहण की है और मैंने ये प्रण लिया है कि जो भी मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है मैं उसका परित्याग कभी नहीं कर सकता। तो ऐसे कृपालु प्रभु श्री राम, जरूरत पड़ने पर उन्होंने धनुष उठाया, यहां तक कि विभीषण को कह दिया कि विभीषण, इस समय भी यदि रावण आकर शरणागत होता है तो मैं उसे भी, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूं। उसने चाहे मेरी पत्नी का अपहरण किया, इतना बड़ा अपमान किया मेरा, इतना बड़ा अपराध किया, पाप किया, फिर भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा यदि वो शरणागत होता है तो। रावण खैर वो अलग ही जमात का था, तो ऐसे प्रभु श्री राम यदा यदा ही धर्मस्य का पालन किए उन्होंने। तो यहां पर हम देख रहे हैं अर्जुन जो कि गांडीव छोड़ दिए, और ऐसे समय पर गांडीव को उन्होंने छोड़ दिया जब उनको उस समय गांडीव को उठाकर उसको इस्तेमाल करना था धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आज के श्लोक में, अर्जुन तुमने ये जो गांडीव यहां पर छोड़ दिया है ना, तुम अपमान कर रहे हो धर्म का। धर्मस्य ग्लानि यहां पर सीधे भगवान संकेत कर रहे हैं, अर्जुन द्वारा गांडीव छोड़ा जो गया है। तो इससे भगवान क्या बता रहे हैं कि धर्मस्य ग्लानि का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो लोग अधार्मिक हैं या पापी हैं वो धर्म की ग्लानी कर रहे हैं। धर्मस्य ग्लानी यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो अधर्म नहीं कर रहे परंतु धर्म का भी पालन नहीं कर रहे, जो अपने आप को बीच वाला कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द आपको पता होगा, भारत में आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। हम सेक्युलर हैं, भगवान कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, वो भी धर्म का अपमान हो रहा है, धर्मस्य ग्लानि। तो अब हम हमारे आज के चर्चा के विषय लेंगे धर्म की ग्लानि। उसके साथ साथ भगवान ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर हम आज भूरी भूरी चर्चा करेंगे, अभ्युत्थानम। घबराइए मत, संस्कृत का शब्द है, हम इसका अनुवाद कर आपको बताएंगे कि क्या अर्थ है इसका, और न केवल अर्थ बल्कि अभ्युत्थानम का तात्पर्य हमारे आचार्यों ने क्या दिया, समझने योग्य है। तत्पश्चात पांच प्रकार के अधर्म श्रीमद् भागवत के अनुसार, और फिर आज के श्लोक में अंतिम दो शब्द जो भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, आत्मानम सृजामि, उसकी व्याख्या, उसका तात्पर्य क्या है। तो अब ये दो शब्दों का मैचिंग क्या है आज के श्लोक में, धर्मस्य ग्लानि अभ्युत्थानम। तो अब तक हमने हमारे पांच सिटिंग में यदा यदा ही धर्मस्य की व्याख्या और ग्लानि। अब भगवान इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूं, और अभ्युत्थानम इस शब्द के द्वारा भगवान एक और कारण बता रहे हैं कि धर्म अभ्युत्थानम। तो हमें यह श्लोक कैसे समझना होगा, धर्मस्य ग्लानि और अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो धर्म एवं अधर्म, इन दोनों शब्दों को यदि हम लें आज के श्लोक के, तो ग्लानि और अभ्युत्थानम, थोड़ा सा आप लोगों को, आप कोई बीच में आ रहा है यहां पर, थोड़ा थोड़ा सा कुर्सी उधर ले लें, जगह है, वॉलपेपर को टच मत कीजिएगा। तो ये जो दो शब्द हैं ग्लानि और अभ्युत्थानम, इन दो शब्दों के संदर्भ में धर्म और अधर्म। Just remove those chairs. तो ग्लानि अर्थात अपमान, और अभ्युत्थानम का अर्थ है सम्मान। तो दोनों विपरीत हैं, दोनों के अर्थ, ग्लानि और अभ्युत्थानम विपरीत। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं कब कब अवतरित होता हूं, जब धर्म का अपमान होता है और उसके साथ साथ अधर्म का सम्मान होता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अधर्म का सम्मान। तैयार है? कलयुग विशेष रूप से, अब भगवान ने द्वापर के अंतिम चरण में ये भगवद गीता सुनाई थी, अर्थात इसका रेलेवेंस तो नित्यकाल तक रहता है, परंतु विशेष रूप से इमीडिएटली द्वापर के बाद शुरू हुआ हमारा ये कलयुग, जहां पर हम अवतरित हुए। तो कलयुग की विशेषता आपको ध्यान में रखना है, कौन से दो शब्द, ग्लानि और अभ्युत्थानम। ग्लानि का अर्थ है अपमान, अभ्युत्थानम का अर्थ है सम्मान। तो धर्म का अपमान, अधर्म का सम्मान, ये है कलयुग। यदि कोई पूछे भाई कलयुग की परिभाषा आप दीजिए, कलयुग की परिभाषा है अधर्म का सम्मान, धर्म का अपमान। सिन इज ग्लैमराइज्ड, स्पिरिचुअलिटी इज रिडिक्यूल्ड। न केवल पालन किया जा रहा है अधर्म को, अधर्म का, बल्कि उसकी वाहवा की जाती है कलयुग में। न केवल उसकी वाहवा की जाती है बल्कि ऐसे अधर्म को ग्लैमराइज, ग्लैमराइज का अर्थ समझते हैं आप लोग, उसको एक जीवन शैली बनाई जाती है, एक पेशा, एक कला, एक हुनर। हम अधर्म की बात कर रहे हैं बाय द वे, यदि आप भूल बीच में ट्रैक लूज मत कीजिए। अधर्म को इतना सराहा जाता है, इतना सराहा जाता है कि आजकल कुछ ऐसे अधार्मिक कार्य हैं जिनके बिना लोग कहते हैं कि हम जी नहीं सकते। उसको उन्होंने अपना जीवन बना लिया। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लैमराइज्ड सिंस। ग्लैमराइज्ड सिंस का अर्थ है कि ऐसे पाप जो कि अभी भारत में भी आना शुरू हो गए हैं प्रचुर मात्रा में, जो कि लोग जब हम जब इनको देखते हैं ये सब करते हुए, तो हमको अब कोई आश्चर्य नहीं होता। ये सबसे बड़ी ग्लानि है धर्म की। सबसे बड़ी ग्लानि क्या है कि अधर्म जो कि ग्लैमराइज किया गया है उसको देखने पर हमें आश्चर्य नहीं हो रहा। सुधारना तो छोड़ दीजिए। सबसे पहला, कितने लोग जानते हैं ये क्या है, लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा, कितने लोग नहीं जानते बिल्कुल भी लिव इन रिलेशनशिप्स। नहीं नहीं, आप शर्माइए मत, अच्छी बात है नहीं जानते। तो एक आध हाथ ही उठे ऊपर, मतलब अधिकांश आप लोग जानते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप है क्या? लिव इन रिलेशनशिप ये पाश्चात्य विकृति की देन है, संस्कृति तो कहेंगे नहीं उसे। तो वो ये है कि आजकल वहां पर और भारत में भी बहुत जगह पर, मुझे आश्चर्य कब हुआ जब कुछ एक आध साल पहले मैं बंबई गया था, तो वहां पर एक घर में मैंने कार्यक्रम किया साउथ बॉम्बे, और वहां पर साउथ बॉम्बे के परिवार के बच्चे, ये बच्चों की बात मैं बता रहा, उनके स्कूल में डिबेट कंपटीशन होने वाला था। तो वो बच्चे मेरे पास आए, सर जी हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, आप कुछ पॉइंट्स हमें बताएंगे। मैंने पूछा टॉपिक क्या है, इज लिव इन रिलेशनशिप गुड और बैड। अच्छा, पहले आपको बता दें ये है क्या। लिव इन रिलेशनशिप मतलब स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं बिना शादी किए, क्योंकि वहां पर जो डिवोर्स रेट, और डिवोर्स रेट जो इतना बढ़ चुका था, 70% शादियों में डिवोर्स हो रहा था, 3 में से 1 शादी डिवोर्स, नहीं 70% विद इन 3 years ऑफ मैरिज, सॉरी। और डिवोर्स मतलब फिर ऐसा नहीं कि वो सस्ते में काम होता है। एक व्यक्ति कोर्ट में गया तलाक करवाने के लिए, तो जो वो वकील था, वकील ने कहा भाई 10,000 रुपए लगेंगे। तो उसने कहा 10,000 रुपए? पंडित जी ने शादी की थी 101 रुपए में। पंडित जी 101 में शादी करवा दिए, आप तलाक के 10,000 मांग रहे हैं। तो वकील कहता है देख लिया ना सस्ते में कराने का नतीजा। तो ये क्योंकि इतने तलाक वहां पर होने लगे, तो उन्होंने एक इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन डिसाइड किया कि भाई हम लोग पहले आजमा कर देखेंगे। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? हम आजमा कर देखेंगे एक दूसरे को, आजमाएंगे। और कई ऐसे 10-10 साल तक एक साथ रहे, स्त्री पुरुष 10-10 साल तक आजमा रहे हैं एक दूसरे को। 4 बच्चे भी हो गए और फिर 11वें साल में डिसाइड करते हैं अब थोड़ा थोड़ा विश्वास आ रहा है तुम पर, 4 बच्चे होने के बाद चलो शादी करते हैं। और वो बहुत से केसेस में होता है कि 10 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे, 4 बच्चे भी हो गए। कई बार उनको पूछा जाता है कि भाई शादी से पहले तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, क्या माजरा क्या? तो कहते काम आएंगे टेबल कुर्सी लगाने के शादी के दिन। अच्छा आपको क्या लगा? तो बहुत से 10-10 साल एक साथ रहकर वहां पर आबादी भी बढ़ा दिए और फिर 11वें साल शादी की, 12वें साल डिवोर्स। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो अब देखो ये जब इसको डिस्क्राइब किया जाता है तो वाहियात लगता है, ये है ना। लेकिन इसको नाम क्या दिया है? लिव इन रिलेशनशिप। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में ना। अरे पता नहीं, इसको अगर डिस्क्राइब नहीं किया जाए तो लगेगा कि रिलेशनशिप, लिविंग इन, वाह, इन नथिंग आउट। और इसको फिर ग्लैमराइज करते हैं। कैसे ग्लैमराइज करते हैं? मीडिया में। फिर आप आजकल के सिनेमा उनके अंदर देखते हो कि उसके अंदर ये सारे मुद्दे स्टाइल से दिखाया जाता है। तो कलयुग की स्पेशलिटी क्या है? अभ्युत्थानम का अर्थ क्या है? सिन डन इन स्टाइल। व्हेन एनीथिंग इज डन इन स्टाइल, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ग्लैमरस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कूल। ये सब वर्ड्स बोलते हैं आजकल। इट्स कूल टू सिन, इट्स कूल टू बी इन लिव इन रिलेशनशिप। अब एबॉर्शन, अब देखिए भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, बहुत भयानक वर्ड है ना, हत्या, भ्रूण हत्या। नहीं नहीं, हम आगे आएंगे कि डिसेप्टिव टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज करते हैं, वो भी एक अलग स्लाइड हम लेने वाले हैं। तो एबॉर्शन, अब सबसे पहले उसको पाश्चात्य देश ने लीगलाइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया, उसको सोफिस्टिकेटेड कर दिया। उसको फिर बताया गया कि कैसे सेफ है, हेल्दी है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, ये सारी चीजें। और फिर वो भारत में शुरू हुआ। तो भारत में अब क्लिनिक्स खुल गए हैं, पता नहीं मेरे को अभी भी डाउट है लीगलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। इट्स बीन क्लोज्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल फोर्टिसाइड, वो अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो हम आएंगे। एमटीपी सेम, डोंट थिंक एमटीपी एंड अबॉर्शन आर डिफरेंट। अबॉर्शन इज लीगल, या विच मीन्स एनीवन हु वांट्स टू अबॉर्ट कैन गो ऑफिशियली एंड गेट इट अबॉर्ट। या इट्स ऑफिशियल, सो इट्स लीगल, इट्स लीगल। तो अब इसको कैसे इस चीज को ऑफिशियल लीगल बनाकर फिर बाद में उसको एक स्टैंडर्ड नॉर्म बना लिया जाता है कि यदि किसी भी कारणवश आपको शिशु नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप? उस जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। थर्डली, मीट ईटिंग। अब प्रोटीन के नाम से और तंदुरुस्ती स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं स्पोर्ट्स में था तो मेरा जो कोच था, पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, उनका नाम बालकृष्णन था, और वो मुझे आए दिन बोलते थे कि ये जो तू घास फूस पे जी रहा है ना, घास फूस पे, स्पोर्ट्स में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग नेशनल लेवल तक पहुंच गए थे और वो आए दिन कहता रहता, अनलेस यू ईट बीफ, नॉट एनी अदर मीट बट बीफ, हम बताएंगे आपको है क्या, अनलेस यू ईट बीफ यू कैनॉट एक्सेल इन स्पोर्ट्स, द पर्टिकुलर स्पोर्ट यू आर प्लेइंग। तो कई बार उसने जब ये बोलता गया, मैं टेनिस खेलता था, तो मैंने उसको कहा, सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नॉट फोर्स मी इनटू ऑल दैट, बिकॉज द गोल ऑफ माय लाइफ इज नॉट टू हिट बॉल्स। और वो क्रोधित हो गया। खैर वो अलग किस्सा है। तो कैसे तंदुरुस्ती के नाम पर आपको प्रोटीन की मात्रा मिले ज्यादा, इसलिए मीट ईटिंग इज समथिंग विच इज वेरी हेल्दी, इट इज ग्लैमराइज्ड, इट इज प्रेजेंटेड इन सच अ टेस्टी वे दैट पीपल दे थिंक दैट इफ दे बिकम वेजिटेरियन देन दे विल बी वीक, दे विल बी कंसिडर्ड प्रिमिटिव। मेरे को एयरफोर्स में आए दिन हर रोज मेस में मिलता था वो मांस, मांसाहारी, तो मुझे वहां पर बहुत से लोग खिल्ली उड़ाते थे मेरी, घासपूस घासपूस आ गया घासपूस, मुझे उस पर बहुत गर्व होता था। तो हमारा एक काउंटर होता था घासपूस काउंटर, एक काउंटर होता था तंगड़ी कबाब। अभी इस चीज को देखिए, एक है जो प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर जो बना हुआ, हालांकि ये एक अपने आप में एक सेमिनार मैंने बहुत समय पहले दिया था बॉम्बे में भी, यहां पर भी मेरे ख्याल से एक बार दिया। तो इसमें यदि हम ये देखने जाएं कि हमारा जो ये शरीर है, जब भी मेरे पास लोग आके पूछते थे कि भाई तू मांस क्यों नहीं खाता, तो मैंने कहा कि भाई मैं कोई कार्निवोरस एनिमल नहीं हूं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनको प्रकृति ने उस प्रकार से बनाया। बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, बोले ऐसा थोड़ी होता है तो फिर तुम जो तुम ये खाते हो चिकन या जो भी कुछ खाते हो उसको चपाती चावल के साथ क्यों खाते? You always need something vegetarian to eat. ऐसे ही खाओ शेर जैसे खाता है, अपने हाथों से चीरफाड़ करो जानवर का और बिना पकाए कच्चा खाओ, देखो कितना जियोगे तुम, कितना पचा सकते हो उसको। तो है क्या, हमको प्रकृति ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि से हमने उसको, हमने चाकू या जो भी वो स्लॉटर हाउस वगैरह इन्वेंट किया और उससे उसको काट काट के बोटी बोटी उसको पका के उसके अंदर मसाले डालकर उसको फिर हम जैसे पकाते हैं तो उसको टेस्टी बनाकर, नहीं तो कोई नहीं खा पाएगा जैसे प्राकृतिक रूप से जो खाते हैं मांसाहारी प्राणी, लेकिन उसको ग्लैमराइज किया जाता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब देखिए आप ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं शराब के, इसमें आप देखोगे एकदम अच्छे दिखने वाले बैक पाइपर जॉनी वॉकर, एकदम स्मार्ट लुकिंग, या सिगरेट में आप देखोगे एकदम स्मार्ट लुकिंग मालबरो का एक था वो हीरो काउबॉय टाइप, वो घोड़े के ऊपर भागते हुए, फिर उसको इस प्रकार से दिखाते हैं वो लोग एडवर्टाइजमेंट में कि वो एक जो कश लेता है तो जिस स्टाइल से वो कश लेता है, बस मैं भी अगर वो कश लेना शुरू करूं तो मेरा भी जीवन ऐसे स्टाइल में हो जाए। और लिखा जाता है उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग, जरूरी है, आजकल तो इमेजेस भी डालते हैं कि तुम्हारे फेफड़े क्या हो रहे हैं उनके अंदर, दिखाते हैं फिर भी उसको निकाल निकुल के अंदर से वो स्टिक निकालते हैं सिगरेट, तो उसको एकदम स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अमेरिका में एक सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट, तो उनका एक रूल था और सब जगह ये रूल है मेरे ख्याल से कि सिगरेट को एडवर्टाइज आप कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो चेतावनी आपको दिखानी है बोल्ड लेटर्स में। तो ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही एक स्टाइलिश आदमी सिगरेट को पी रहा है और फिर वो कुछ 30 सेकंड का कमर्शियल है, उसके बीच में उनको वो स्टैट्यूटरी वार्निंग दिखानी, तो वो स्टाइल में दो कश लेता है और फिर स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है स्क्रीन पर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ कुछ सेकंड के लिए, और फिर ये आता है फिर तीसरा कश लेता है और ये कहता है हु केयर्स। तो लास्ट मैसेज क्या था, हु केयर्स। तो लास्ट मैसेज जब लोग देखते हैं तो देखो इसको बोलते हैं हीरोइज्म, हु केयर्स, ग्लैमराइज, इस तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है। और इसके अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी की खिल्ली उड़ाई जाती है कि कोई अगर अध्यात्म का पालन कर रहा है तो अध्यात्म का पालन करते समय उसका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कि आजकल यदि स्कूल कॉलेजों में कोई भगवान की बातें करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, अरे तो भगवान भगवान करता रहता है। अच्छा रामायण में इसकी शुरुआत कहां से हुई, यहां नासिक से हुई है। ये स्कूल कॉलेजों में अध्यात्म की खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना यहां से शुरू हुई। कैसे, सूर्पणखा यहां आई, सूर्पणखा वो अपने परिवार के बारे में रामचंद्र जी को बता रही थी। पहले तो रामचंद्र जी इंप्रेस हुए नहीं इससे, तो इसने सोचा कि मैं अपने खानदान के विषय में बताती हूं तो शायद मान जाए, जैसे कि बहुत ऊंचे खानदान से थी, तो अपने खानदान के विषय में कहती मैं परम पूज्य रावण की बहन हूं। तो रामचंद्र जी सुन रहे थे, जानते थे कौन है ये रावण, रावण की बहन कुंभकर्ण वो भी मेरा एक ऐसा भाई, न भूतो न भविष्यति, न तो कोई ऐसा पैदा हुआ न होगा आगे, कोई नहीं इतना सोच सकता। और फिर सूर्पणखा ने विभीषण के बारे में कहा, विभीषण भी तो भाई था, तो कुंभकर्ण रावण विभीषण, तो विभीषण के बारे में सूर्पणखा कहती है और एक वो है वो विभीषण है उसका नाम, वो भगवान भगवान करता रहता है। जब रामचंद्र जी ने विभीषण के बारे में पहली दफा सुना, शूर्पणखा के मुंह से सुना, तो रामचंद्र जी अपने मन में ठान लिए कि ये विभीषण जो है इसको मैं अपनी कृपा दूंगा। तभी यहां पर नासिक में, तो इसलिए स्कूल्स में अगर कोई अध्यात्म का पालन करता है तो उसकी खिल्ली उड़ी जाती है। हाल ही में एक परिवार से मैं चर्चा कर रहा था, तो उनकी लड़की, छोटी लड़की, वो अपना फ्रवशी, फ्रवशी यहां पर है ना, तो वहां पर जाती हो, तो एक बार मेरे ख्याल से वो शायद 10 साल की होगी, 9-10 साल की लड़की है वो, तो स्कूल में उनके क्लास में टीचर ने पूछा, सबको पूछ रही थी टीचर कि बताओ आप बड़े होके क्या बनोगे। तो सब बच्चे, कोई अभी देखो बच्चों को तो पहले से वो ट्यूनिंग दी जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। तो ये लड़की, इसका जब नंबर आए तो ये खड़ी हुई, और खड़ी होके इसने जो कहा सब लोग हंसने लगे इसके ऊपर। इस लड़की ने कहा कि मैं मेरी मां की तरह हाउसवाइफ बनना चाहती हूं। क्या कहा उसने? मैं मेरी मां की तरह एक हाउसवाइफ बनना चाहती हूं। सब हंसने लगे, हाउसवाइफ। अब सोचिए कि जिसके अंदर कोई एक स्वाभाविक संस्कार भी आ रहा है, जब इतने लोग हंसने लगेंगे उसके ऊपर, तो उसको क्या लगने लगेगा कि मैंने ये बात बोलकर बड़ा अपराध कर दिया है। तो जो थोड़े बहुत अगर धर्म का पालन भी करना चाह रहे हैं, उनकी जब खिल्ली उड़ाई जाती है तो वो छोड़ देते हैं उसका पालन करना, यदि वो दृढ़ निश्चय नहीं है। तो ये छोटी लड़की घर में आके अपनी मां से पूछती है कि मम्मी मैंने कुछ गलत कहा, सब लोग हंसने लगे मैंने जब ये कहा। दिस इज कॉल्ड रिडिक्यूलिंग स्पिरिचुअलिटी। और जैसे मैं अक्सर ये मुद्दा कहा हूं, यहां पर नासिक में ये ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां पर यदि हम जाकर कहते हैं कि हमको मूल्य शिक्षण भगवद गीता सिखानी है बच्चों को, तो एक तो वो धर्म निरपेक्ष के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर बोला जाता है कि नहीं, और दूसरा ये भी बोला गया है कि आप अगर इस ड्रेस में आओगे तो हमारे स्कूल का स्टेटस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल बहुत मॉडर्न स्कूल है, और ये जो आपकी वेशभूषा है पिछड़ी हुई वेशभूषा है आपकी, लानत है हमारे भारत देश के ऊपर कि हम धर्म, अपना जो धर्म है उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट ग्लानी, रिडिक्यूलिंग स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, अब क्या सिखाया जा रहा है? वो अंग्रेज डार्विन जो आया था कि हम लोग सब बंदर से आए हैं, भगवद गीता में हमारे जो शास्त्रों का ज्ञान है वो तो कब का हमने बाहर निकाल कर फेंक दिया हमारे शिक्षा प्रणाली से, और फिर वो डार्विन थियरी कि हम लोग सब बंदरों से आए, कोई भगवान भगवान नहीं थे, हम लोग बंदरों से आए। और ये डार्विन था कौन? गौ मांस खाने वाला एक ब्रिटिशर, और उसकी पोथियां स्कूल कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों को, जिसको कोई पता नहीं कि डार्विन थियरी है क्या, बड़े होते होते फिर उसके मन में क्या, फिर बाद में जब मंदिर में जाकर सुनता है बड़े होने के बाद, लेकिन हमको तो स्कूल में बताया था हम बंदरों से आए। और गीता, ये गीता क्या होती है? क्योंकि कभी गीता बच्चों को बताया ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था, क्योंकि स्कूल का सिलेबस इतना कि भाई गीता खोलने का टाइम कहां, और सिलेबस है क्या, बंदरों से आए हम। सिंपल लिविंग बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स इज रिडिक्यूल्ड। यदि आप सादा जीवन जी रहे हो तो लोग कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है। मेरे कुछ पुराने मित्र मुझे पूछते, यार तू ये क्या कपड़े पहनता है, ये क्या है धोती, इसलिए तेरे को इतना एयरफोर्स का ट्रेनिंग दिया था, तेरे माँ बाप ने इसलिए इतने पैसे खर्चे किए थे तेरे पे, तो आगे चलकर धोती पहनेगा सही में? तो उनको मतलब कोई अगर सादी वेशभूषा पहन रहा है तो मैंने देखा तू जो ये बोरी पहना हुआ है जींस जिसको द्वापर युग से धोया नहीं है, और आजकल तो आपको पता होगा शायद ये आते हैं इनको महंगे वाले जींस बोले जाते हैं, गन शॉट जींस होते हैं कि वो जींस को फाड़ फूड़ के, गन के शॉट से फाड़ फूड़ के वो एक नया स्टाइल है। तो यहां वहां से सब फटे हुए जींस वो पहन के घूमो तो वो स्टाइल है, और कोई भिखारी बेचारा चिथड़ों में घूम रहा है उसको भिखारी बोला जाता है, और जिसके पास कोई अरबपति करोड़पति है वो अच्छा खासा कपड़े को फाड़ फूड़ के पहन रहा है आजकल, उसको स्टाइल बोलते हैं, और कोई अगर धोती कुर्ता में घूमे तो बोलते हैं ये क्या पिछड़ा हुआ जीवन। सो सिंपल लाइफ बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स इज रिडिक्यूल्ड। सेंस कंट्रोल एंड गिविंग अप मटीरियल प्लेजर्स, फिर से मेरे मित्र, यार तू तंगड़ी कबाब नहीं खाता, तू दारू नहीं पीता, तू कोई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, तू जी क्यों रहा है? मतलब जीवन का मकसद क्या है, जो लिस्ट उन्होंने अभी भी बताई, ये जीवन का मकसद। तो गाने भी आजकल ऐसे है, वी नो नीड नो सेंस कंट्रोल, वी नो नीड नो एजुकेशन, ये सब आजकल गाने सुन सुनकर कि हाँ फ्री लाइफ। और पेरेंटिंग में भी ये सिखाया जाता है, बच्चों के ऊपर कोई रोकथाम नहीं, उसको करने दो जो करना है। हाँ तुम्हारे गोद पर बैठकर तुमको थप्पड़ मारेगा नहीं, नहीं नहीं, फ्रीडम देना उसको। तो अनुशासन सही तरीके का हमारे मनुष्यों के लिए निर्धारित किया गया हमारे शास्त्रों में, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये जो ज्ञान श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि मनुष्य जीवन शुरुआत उसकी होती है जब हम दिव्य तप में लगते हैं। और फिर कलयुग में खिल्ली उड़ाई जाती है, यदि आप अध्यात्म का पालन पब्लिकली करना शुरू करो तो बाहर भी जाता है ये सब सर मुड़वा के? ये सब प्रश्न मुझे पूछे जाते थे, कहां गई तेरी जुल्फें, कहां गया वो स्टाइल, अभी ये सब शर्म नहीं आती ऐसे बाहर जाने में, ये धोती पहनने में, ये सब में पब्लिक। तो पब्लिकली अभी बहुत से हमारे भक्त जनाएं जब इस्कॉन में आते हैं, जब बीड बैग और तिलक वगैरह, तो उनको बाहर बीड बैग ले जाने में शर्म आती है ना, बहुत लोगों का अनुभव शुरुआत में ऐसा रहता है कि बीड बैग लेकर बाहर अगर घूमे तो लोग देखते हैं, कुछ कई बार तो पूछ लेते, लग गई क्या, हाथ पे लग गई क्या, अरे लग गई, इधर लग गई है, इसको निकाल रहे हैं बाहर, हाथ पे लग गई है। तिलक लगाकर जाओ तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं कौन से जंतु, कौन सा प्राणी कहां से उतर के आया है। हाँ हाँ तो सिगरेट जब बीड़ी सामने पी रहे हैं वो क्या है? वो शो ऑफ नहीं है. इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ये स्टोरी सुनाते थे कि अंग्रेजों के शासन में उन्होंने कुछ भारतीय जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उसमें उन्होंने एक रूल निकाला कि कोई भी कल से तिलक लगा के नहीं आएगा. और जो तिलक लगा के आया वो बर्खास्त हो जाएगा. तो सब लोग भाई नौकरी प्यारी है, तिलक विलक तो लगाते रहेंगे, क्या जरूरत है उसकी बाद में कभी. तो सब में से केवल एक व्यक्ति वो तिलक लगा कर आया. तो बॉस ने कहा तुम एक केवल यहां पे रुकोगे, बाकी सब बर्खास्त. तो प्रभुपाद ने स्टोरी सुनाई. क्यों? क्योंकि उस ब्रिटिश ऑफिसर ने देख लिया कि दिस पर्सन हैज वैल्यूज इन हिज लाइफ, ये बिका हुआ नहीं है, इसलिए ये लॉयल रहेगा. उसने ये पहचान लिया, दलबदलू नहीं है. समझे, सुना आपने वर्ड कभी दलबदलू? दलबदलू नहीं है. तो ये सारी चीजें कलयुग के अंदर क्या हम चर्चा कर रहे हैं? धर्मस्य ग्लानी और अधर्मस्य अभ्युत्थान. अब अभ्युत्थानम अर्थात अधर्म के सम्मान की शुरुआत कैसे होती है ये जानने की कोशिश हम करेंगे. तो आपके सामने ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत वर्षों पहले. हमारे काफी मैनेजमेंट सेमिनार्स में हम इस सिंड्रोम का डिस्कशन करते हैं. इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम. तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि मेंढक को, जीवित मेंढक को एक पतीले में, पानी के पतीले में डाला और नीचे से आंच उसकी चालू की, पानी को उबालना शुरू किया. तो कम आंच पर धीरे 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 पानी उबलने लगा, गर्म होने लगा पहले, फिर उबलने लगा. बहुत धीरे धीरे वो पानी गर्म हो रहा था. तो मेंढक पानी में, पहले उसे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर पानी थोड़ा गर्म हुआ तो उसे लगा हाँ शायद पानी गर्म हो रहा है, अच्छा लग रहा है, गर्म भी अच्छा लग रहा है. फिर थोड़ा और गर्म हुआ, अच्छा मजा आ रहा है. धीरे 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 उबलने लगा पानी 100 डिग्री. अब वो इतना आदि हो गया उस गर्म पानी के कि वो बाहर नहीं निकल पाया. सोचो खौलता हुआ पानी, मेंढक बाहर नहीं निकल पाया. और उसी खौलते हुए पानी में बाहर से एक मेंढक को डाला तो तुरंत वो बाहर कूद गया. तो ये बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम क्या है कि जब हमारे जीवन में अधर्म धीरे धीरे आंच लेता है ना, हम मेंढक की तरह बैठे रहते हैं, अधर्म की आंच धीरे धीरे चालू होती है तो हम उसको सहन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. हाँ थोड़ा सा है, कुछ गड़बड़ नहीं है. हाँ वो खोलने लगता है फिर भी हम उसके आदि हो जाते हैं और हमको समझ में ही नहीं आता है कि अरे हम जल के मर रहे हैं उसके अंदर, उस खोलते हुए पानी में. इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम. यहां पे जैसे ये एकदम इत्मीनान से खोलते हुए पानी में जो एक जो मेंढक दिख रहा है वो बोल रहा है दिस इज द लाइफ, आई लव द गुड सोक. और इतना ही नहीं, यहां पर आप ध्यान से पढ़िए, यहां पे ये जो दो मेंढक क्या कह रहे हैं. And so Francis, by a gradual process of incremental taxation, I declare that the general populace will be unaware of the stranglehold our government will eventually have over them. तो बाहर से जो ऐसी सरकार जो अधर्म का सम्मान करती है, कौन सी सरकार? अभ्युत्थानम. तो वो धीरे धीरे प्रजा को आदि बना देती है अधर्म को सहन करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि तुमको हम कोई शक्ति नहीं देंगे उस अधर्म के विपरीत जाने की या विरोध करने की। आंच बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते। और ये जो दूसरा मेंढक क्या बोल रहा है, इज इट मी और इज इट गेटिंग हॉट इन हियर। कई होते हैं उनको लगता है कि चटका लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, नीचे आंच बढ़ रही है, गर्म हो रहा है, खोल रहा है पानी। दूसरा बोलता है चुप करके बैठा रहे। तो होता क्या है, एक जब धर्म का पालन करने के लिए कुछ अपना मुंह भी खोलता है तो 10 मेंढक होते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, चुप करके पतीले में बैठा रहे। इसको कहते हैं मॉब साइकोलॉजी। मैं आपको एक घटना बताऊं, एयरफोर्स के मेस में एक मेरा बैचमेट था, ये बिहार के ऐसे गांव से था, इस पूरे गांव में किसी को पता नहीं था कि मांसाहार क्या होता है, पूरा गांव शाकाहारी, ये ऐसे गांव से था। तो जब अब सबसे पहले आया, ज्वाइन हुआ, रिक्रूट हुआ ये, तो मेस में, अब वो मेस में 2 काउंटर्स थे, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। तो इसने देखा जहां पर लंबी लाइन खड़ी, उसको लगा एक ही काउंटर है, और लंबी लाइन नॉन वेजिटेरियन की लाइन थी, वो लाइन में खड़ा हो गया और ये खाने भी लग गया। इसको पता ही नहीं लगा कि ये क्या खा रहा है, क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक कभी वो खाया नहीं था। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद उसको पता लगा कि वो क्या खा रहा है। तो उसने पूछा कि भाई ये शाकाहारी, बोला वो काउंटर है ना शाकाहारी का, तो उधर क्यों नहीं खाता, क्योंकि उस काउंटर पर कोई खड़ा ही नहीं होता था, तो उसको पता ही नहीं था कि काउंटर भी है। और 3 दिन खाने के बाद ये एडिक्ट हो गया, फिर जिंदगी भर उसने छोड़ा नहीं उसका। इसको बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, आदि हो जाते हैं। तो ये जो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है, हाल ही में हम हमारे भागवत मंथन में भी इसकी चर्चा कर रहे थे। ये करता क्या है कि अधर्म की आंच समझते हैं ना आप लोग, फ्लेम, वो धीरे 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 हमारे जीवन में जब बढ़ती रहती है, तो अंग्रेजी का ये शब्द है डिसेंसिटाइज्ड, जैसे वो सुन्न हो जाता है, कौन, वो मेंढक सुन्न हो जाता है, उसके बाद में उसे कुछ नहीं पता लगता कि ये पानी कितना खौलता हुआ है, मुझे बाहर निकलना चाहिए, मैं जल के मर जाऊंगा इसके अंदर, नहीं, डिसेंसिटाइज्ड। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा कि कितने हैं जो घर में और घर के बाहर एक ही चप्पल पहनते हैं। तो बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर किया, और लोग आश्चर्य कर रहे थे ये क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूं। अब देखो, हमको बचपन में बताया गया था कि जो बाहर की चप्पलें हैं वो घर में नहीं पहननी। कितने यहां पर ये सिखाया गया था, आप लोग में से कितने हैं? तो मैंने देखा कि फिर धीरे धीरे इसमें देखो कैसे ये बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम चालू हुआ कि अरे बाहर मत उतारो, थोड़ा घर में अंदर आके वहां तक उतार दो, सोफा के पहले तक। फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने क्या किया, ये क्या है, दकियानोसी ख्यालात के लोग, चप्पल अंदर पहन के नहीं आ, क्यों नहीं पहन के, मैं पहन के आऊंगा, सोफा तक आऊंगा, अंदर तक चलूंगा, यहां पर सब किचन में इधर। फिर उनके जनरेशन, उनके जो वंशज आगे भाड़ में गए, ये सारे रीति रिवाज, हमको जो मन में आता है वो करेगा। और फिर उनके आगे जनरेशन जो आगे आए, उनको जब बताया गया कि आपके पूर्वज एक ऐसे थे जो चप्पलें बाहर उतारते थे, हैं? चप्पलें बाहर उतारते थे, विश्वास नहीं करते, सही में बाहर उतारते हो तो घर के बाहर चप्पल उतारते, पिछड़े हुए होंगे वो। हमारे एक राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी, उनके साथ ये किस्सा हुआ, राजस्थान के एक ऐसे गांव से वो थे कि वो गांव ने कभी कोई मोटर गाड़ी नहीं देखी, कोई बस नहीं देखी, केवल ऊंट गाड़ी चलती थी वहां पे, रेत के टीले खाली वहां पे। तो पहली दफा बस आई गांव वालों को उस गांव से जयपुर ले जाने की। तो ये मेरे को बता रहे थे कि पहली दफा बस देखी उन्होंने कि ये क्या घर जैसा दिख रहा था दरवाजे। तो जब सब लोग को बिठाया गया अंदर, दरवाजे खुले, तो इनको लगा कि किसी के घर में हम जा रहे हैं, तो चप्पल बाहर निकाल दी उन्होंने, बस के बाहर चप्पल निकाल दी, बस में बैठे और बस चालू हो गई थी। ये घर चलने कैसे लगा? और जयपुर पहुंचने के बाद जब नीचे उतर तो चप्पल ढूंढ रहे हैं। अब देखो हमको हंसी आ रही है, ऐसी शुरुआत होती है, ऐसी शुरुआत होती है कि जो चीज उसको धीरे 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 धीरे, जैसे हमको बचपन में बताया गया था कि तुम्हारे प्लेट में जो भी भोजन दिया गया उसको तुमको खत्म करना। अब होटल में जाना शुरू कर दिया तो होटल का रिवाज क्या है? टिप के साथ प्लेट में भी छोड़ के जाओ कुछ। हाँ, मैं आपको बताता हूं कि हमारे एक रिश्तेदार, वो बता रहे थे, जो लोनावला में एक फरियाज होटल है 5 स्टार, तो वहां पर ये लोग जाते थे फैमिलीज वगैरह। तो वहां पर जब आपको कुछ दिया जा रहा है तो उनको बताया जाता था कि पूरा नहीं खाना उसको, वो प्लेट भी जो है पूरा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना पूरा? क्योंकि उनको लगेगा, आसपास के लोगों को लगेगा कि कहां से बुखड़ आ गए, पूरा प्लेट साफ करके खा रहे हैं। यहां महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? हावरट, कुठू नाला हावरट, हाँ, काई पण सोडला नहीं। तो देखो, प्लेट पूरा साफ करके अगर कोई खा रहा है तो कई ऐसे होटलों का रीति रिवाज है कि आपकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, इसलिए छोड़ो। तो फिर वो घर आते हैं तो फिर वो घर में भी छोड़ना शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, डीसेंसिटाइज। कि फिर धीरे धीरे, ये तो हम बहुत ही हार्मलेस उदाहरण ले रहे हैं, अभी तो हार्मफुल उदाहरण हमने लिए नहीं है, कि धीरे धीरे बड़े बड़े पाप जब हम देखते हैं, सुनते हैं, करने लगते हैं और पूरे समाज में इसको प्रचलित किया जाता है, तो हम इतने सुन्न या डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हमको आश्चर्य भी नहीं होता है कि यह धर्म है या पाप है। तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का अर्थ है प्रलोभन, प्रलोभन कि अधर्म के अंदर प्रलोभन है कि हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम उसकी चर्चा कर रहे थे ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अधर्म का जो लक्षण है ये प्रलोभन है, टेम्पटेशन है। तो उस टेम्पटेशन के वजह से व्यक्ति पाप करता है। टेम्पटेशन लीड्स टू सिन, सिन डन रिपीटेडली, वन स्टार्ट्स कॉम्प्रोमाइजिंग विद सिन। कॉम्प्रोमाइजिंग का अर्थ है समझौता कर लेता है पाप से कि हाँ भाई, तू मुझे ये सब दे रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, चल, तो तेरा मेरा समझौता, इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल। रिपीट टेम्पटेशन लीडिंग टू सिन, रिपीटेड सिन लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज विद सिन। केवल वहां तक नहीं रहता, अभ्युत्थानम उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसके बाद यू स्टार्ट जस्टिफाइंग सिन। फिर कलयुग में होता क्या है कि उस पाप को उसकी सफाई पेश करना शुरू कर देते हैं हम लोग कि मैंने जो भी कुछ किया है, क्यों किया है, मैं साबित कर सकता हूं कि ये सही है। वी स्टार्ट जस्टिफाइंग सिन। जैसे एक व्यक्ति, उन्होंने इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है उसकी एक फिलॉसफी बना दी। तो जो फाइनल डिग्रेडेशन क्या होता है अधर्म का, मतलब धर्म का डिग्रेडेशन, नॉट जस्ट जस्टिफाइंग बट मेकिंग अ फिलॉसफी आउट ऑफ इट, कि उसका एक संप्रदाय वो चालू कर देता है कि कैसे ये अधर्म और ये पाप तुम्हारे जीवन की एक शैली बननी चाहिए और भगवान ने ये दिया है तुमको साधन पाप करने के लिए। तो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि जब तक आप मैथुन सुख की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचते तब तक आप समाधि तक नहीं पहुंचोगे। संभोग से समाधि, बस उसमें लगे रहो और उसी में समाधि। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ फिलॉसफी आउट ऑफ सिन। तो अगर हम उल्टा जाएं तो सिनफुल फिलॉसफी का उसका पहला स्टेप क्या है? जस्टिफाइंग दैट सिन। उसका पहला स्टेप क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिन, एंड इट बिगिंस विद टेम्पटेशन। अब पूतना वृत्ति, अब ये जो पूतना वृत्ति क्या है कि पूतना ये एक ऐसी राक्षसी थी कि जो छोटे बच्चों को नृशंस तरीके से मार डालती थी। बाल घातिनी, शिशुम्स निघ्नंती, ये सब उसके डिग्रीज थे। पूतना की डिग्रीज थे बाल घातिनी, बच्चों को मार डालना। तो पूतना जो कंस द्वारा प्रेरित, वो जा जाकर वृंदावन में, कंस तो चाहता था कि जो कृष्ण पैदा हुए, आठवां पुत्र जो पैदा हुआ है वो मर जाए, मुझे मारने से पहले वो मर जाए। तो कंस भेज रहा था, उसमें सबसे पहला राक्षस या राक्षसी कंस ने जो भेजी वो ये पूतना थी। तो पूतना वृत्ति क्या है, ये एक श्लोक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। पूतना वृत्ति है पाप को अधिकृत कर दो, लाइसेंस्ड सिन। लाइसेंस्ड सिन मतलब जैसे सरकार देखती है कि शराबी जो हैं वो तो बाज नहीं आने वाले, वो तो पीने ही वाले हैं, तो ठीक है फिर सरकार मान्य देशी दारू केंद्र है ना, सरकार मान्य ताड़ी माड़ी केंद्र। तो जब अब जो शराबी हैं वो लोग देखते हैं खाली देशी दारू नहीं है, सरकार मान्य है, चलो सेफ है। तो पूतना वृत्ति क्या है, पूतना बच्चों को मारती थी बचपन से, उसका पेशा ही वही था, ऐसे परिवार में भी पैदा हुई। राक्षसी, रुधिराशना, बाल घातिनी, शिशुम्स निग्नंती, सब कुछ भागवत में उसके बारे में बताया गया कि वो पेशेवर कातिल, सीरियल किलर। वो पूतना जब कंस के संपर्क में आए तो सरकार किसकी थी, कंस की, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार की वृत्ति से समझ में आ जाना चाहिए कि चेयर पर कंस बैठा है या कौन बैठा है। तो ये एक श्लोक, हम लोग इसकी चर्चा भी कर रहे थे हमारे भागवत मंथन में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम्स चचार निघ्नंती पूरा ग्राम व्रज आदिशु। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना जो बाल घातिनी थी वो अब उसी नृशंस कार्य को वो अधिकृत तरीके से करने लगी। कैसे अधिकृत तरीके से, अब कंस ने उसको कह दिया कि मैं मोहर लगा रहा हूं, कंस ने सरकार की मोहर लगा दी, जा तू जाके मार। तो अब तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से, तो ये पूतना वृत्ति क्या है कि कलयुग में अगर कोई थोड़ा डाउट में रहता है कि पाप करूं या ना करूं तो सरकार उसको मोहर लगा देती, कर बेटा। गौमांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सरकार बोलती है हम ही मार के तेरे को देंगे ना, लेखा हम अलाउ करेंगे गौमांस खा। हाँ, अरे सरकार मान्य है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड, ये जो ब्रांडेड आजकल चलता है ना, ब्रांडेड सिन, जैसे लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड, ये ब्रांडेड सिन, लाइसेंस्ड सिन। तो अब हम आपको एक ये वीडियो दिखाएंगे, क्यों इसको मॉडर्न डे पूतना बताया गया है। ये एक छोटा सा अबॉर्शन के ऊपर है, क्योंकि पूतना बच्चों को मारती थी, लेकिन पूतना, देखिए पूतना इतनी भी गिरी हुई नहीं थी, वो उन बच्चों को मारती थी जो पैदा हो गए। तो सोचिए जो गर्भ हत्या कर रहे हैं वो पूतना से भी गिरे हुए। कंस और पूतना, कंस ने कभी गर्भ हत्या नहीं की, पैदा होने के बाद, बड़ा राक्षस था वो, लेकिन पैदा होने के बाद मारता था वो भी इतना घटियापन पे नहीं आया कभी। लेकिन आजकल दुर्भाग्यवश हम अपने आप को भारतीय कहते हैं और यहां पर हम ये सारी चीजों को लीगलाइज कर ग्लैमराइज कर ये कहते हैं कि इंडिया इज एडवांसिंग। स्विच ऑफ द लाइट्स। बंद रही थी, एक और है। तो थोड़ा ध्यान से बैठिए। अब भारत में जो आजकल तो कम होते जा रहा है, ये शुभ समाचार है, फीमेल फॉर्टिसाइड जिसको कहते हैं, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक्स है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वो लोग देते नहीं है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि बैन किया गया है, लेकिन फिर भी उसको किसी न किसी प्रकार से इलीगली जानकर, और फिर जो अगर लड़की पैदा होने वाली है सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद, तो फिर उसको खत्म कर देना। तो एक उस वीडियो उसके ऊपर भी है कि भारत की स्थिति उस मामले में क्या हो रही है।
बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, नहीं भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए।
बहू, क्या सोच रही हो? घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है।
कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
अब देखिए, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स एबॉर्शन की, वो ये बताया गया है कि हर साल पूरे विश्व में 14 करोड़ से ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, और भारत में केवल हर साल 10 लाख से ज्यादा। और यहां पर हम लोग जब ये सब पढ़ते हैं, आजकल आश्चर्य भी नहीं हो रहा है ना, आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। कई बार लोग पूछते हैं, इतना ज्यादा नहीं है? तो ये आश्चर्य भी नहीं करना, ये बताता है कि जो भगवान कह रहे हैं अभ्युत्थानम, कि जो अधर्म है उसका सम्मान इस हद तक कर दिया है कलयुग ने, मूर्तिमान कली ने, कि हम उसको अब हमारी जीवन शैली बना लेते हैं। तब ध्यान में आप ये ध्यान से देखिए, कुछ डिसेप्टिव टर्म्स जो यूज किए जाते हैं आजकल, ये टर्म्स ऐसे यूज किए जाते हैं जानबूझकर, इनको इस प्रकार से बताया गया है ताकि हमें पता ना लगे कि इसके पीछे इतना बड़ा पाप हो रहा है। जैसे सबसे पहले अबॉर्शन, उसको एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टर्म दे दिया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या बताया जाता है, कोई अगर अबॉर्शन करने जा रहा तो उनको बताया नहीं जाता है कि आपके अंदर, जैसे हमने वो पहला वीडियो देखा कि वो पूरा बच्चा उसका विकास हो चुका है, नहीं भी हुआ तो वो क्या कहा जाता है कि एक टिश्यू है, टिश्यू रिमूवल है। मैं कहता हूं टिश्यू नहीं शिशु है, शिशु शिशु रिमूवल है। मुझे हर समय ये एक छोटी सी एबॉर्शन के ऊपर स्टोरी याद आती है। एक महिला एबॉर्शन के लिए जाती है एक डॉक्टर के पास और उसके हाथ में एक साल का बच्चा होता है, तो गोद में एक साल का बच्चा लेकर जा रही है। तो डॉक्टर उसको पूछते हैं कि आपको ये क्यों करना है अबॉर्शन, तो कहती है मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। तो डॉक्टर कहता है दूसरा बच्चा नहीं चाहिए आपको, मतलब आप एक ही बच्चा रखना चाहते हैं आपके परिवार में? बोला हाँ एक ही बच्चा। तो ठीक है, वो तो अभी तक पैदा हुआ नहीं है, ये आपके गोद में इसको मार देते, एक ही बच्चा चाहिए ना, वो तो आने वाला है अभी, इससे आप तो पूरा खुश नहीं होंगे अभी, ये थोड़ा तो परेशानी आपको दे रहा होगा। तो हे ये क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। आपको लगता है कि गोद में जो एक साल का बच्चा है उसको मारना मर्डर बोलते हैं, और जो पेट के अंदर है उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हत्या नहीं बोलेंगे। तो ये जो डिसेप्टिव टर्म्स यूज किए जाते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि वो हत्या है या मर्डर है, नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, बस कोई मेडिकल है खाली, वो कुछ सोफिस्टिकेटेड टर्म दे दिया उसको। प्रोस्टिट्यूट्स आर कॉल्ड कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, दे आर डूइंग सम सोशल सर्विस एज इफ। पब्लिक शेमलेसनेस, आपने कभी अगर पेपरों में पढ़ा हो, बंबई में जो ये मरीन ड्राइव बैंड स्टैंड वगैरह पर लड़के लड़कियां बैठकर जो करते रहते हैं, उसको उनको वो लोग क्या टर्म देते हैं, PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बोलते हैं उसको। देखो कितना सोफिस्टिकेटेड टर्म दिया उसको, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मैं मैनचेस्टर में था कुछ साल पहले, तो हमारे भक्त प्रोग्राम के लिए मुझे ले जा रहे थे, तो सामने सिग्नल था और हमारे सामने एक गाड़ी थी, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वहां बैठे हुए थे। तो सिग्नल चालू हो गया और उनका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा था अंदर। तो यहां से सब गाड़ियां पीछे से हॉर्न मारने लगी, तो फिर उनको समझ में आया कि हम लोग पब्लिक एरिया में, तो फिर वो गाड़ी आगे चले बढ़ाए। दो सिग्नल बाद वापस से पूरी ट्रैफिक उनके वजह से रुकी। अब क्या हो रहा था, दो सिग्नल में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे अंदर, वो एक दूसरे को हाथापाई से मार रहे हैं। तो मैं वही सोच रहा था, ये भी PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एंगर, कि खाली दो सिग्नल में ये हो गया। तो आप देखो कई बार ये जो टर्म्स दिए जाते हैं, इन टर्म्स से वो ये नहीं दर्शाना चाहते कि कैसे बेशर्मी बढ़ रही है, लेकिन जैसे कि आजकल के जो सिनेमा है, स्पेशली जो आइटम सॉन्ग्स वगैरह दिखाते हैं, तो उसके अंदर जो वल्गैरिटी ऑब्सेनिटी ये सब कुछ दिखाया जाता है, तो उसको क्या टर्म्स यूज करते हैं आजकल वो फिल्म की मैगजीन्स में और बाकी लोग भी डिस्कशन में, क्या बोल्ड मूवी थी, है ना? कितने बार आपने सुना ये मूवी बहुत बोल्ड थी, मतलब डिस्कशन में भी ये वर्ड्स यूज मत करो कि वहां पर शेमलेसनेस दिखाई गई, बेशर्मी दिखाई गई, उसको क्या वर्ड यूज करो, बोल्ड। तो मतलब उस प्रकार का जीवन जो होगा, एक फैमिली कह रहे थे कि उनकी लड़की, टीनेज लड़की आजकल जो कपड़े पहनती है तो उसके माँ बाप ने उसको मना किया, तो वो माँ बाप को कहती है कि हम लोग जो पूरा परिवार बैठ के टीवी देखते हैं, वो टीवी में आप जो मुझे दिखा रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बुर्का पहन के आऊंगी? यू आर पुटिंग द टीवी एट होम, यू आर शोइंग मी ऑल दैट न्यूडिटी एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट आई विल ड्रेस अप वेरी कल्चरली। और उतना ही नहीं, उसके बाद में फिर उसको टर्म्स क्या दिया जाता है, इट इज नॉट वल्गर, इट इज बोल्ड। सो इफ यू वॉन्ट टू बी बोल्ड देन डू दैट, दैट्स वॉट दे आर सेइंग। देन इन रिगार्ड्स टू फूड, स्लॉटरिंग ऑफ मदर काउ, ये नहीं बोलेंगे वो लोग। उसको एक ऐसा टर्म दे दिया कि बच्चे बहुत कम जाकर उसके बड़े होने के बाद उनको मतलब समझ में आता है। तो टर्म क्या दे दिया उसको, बीफ, व्हील, आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, फ्लैश ऑफ बेबी काफ, हैमबर्गर जो मैकडोनल्ड्स और बाकी इतना फेमस है, वो है क्या? उसका लिटरल ट्रांसलेशन है बीफ पैटी, मतलब स्लॉटर्ड मदर काउ इन बिटवीन टू पीसेस ऑफ बन, दैट इज व्हाट हैमबर्गर इज ऑल अबाउट। पोर्क, सुअर का मांस, अब सुअर क्या खाता है आप लोग जानते हैं? जैसे बंबई में जो मछली खाते हैं, स्पेशली जो बॉम्बे फिश ईटर्स, आपको पता है वो मछली क्या है? बॉम्बे पूरे सिटी का जितना स्टूल है वो उस समुद्र में फेंका जाता है, अरेबियन सी में, और उस अरेबियन सी में जो मछलियां वो लोग वही खाते हैं और उसको पकड़ पकड़ के वापस से बेच जाता है। तो वो जो बंबई के सिटीजन खा क्या रहे हैं समझ लीजिए, लेकिन उसको सोफिस्टिकेटेड टर्म दे देते हैं, फिर उसको पकाएंगे इस तरीके से। इनका कोई है माए बाप यहां पर, आपके माता पिता है यहां पे? या तो आप बाहर जाइए या चुपचाप बैठिए, बैठेंगे? कौन है, आपका नाम क्या? राधा। राधा के पिताजी माताजी कोई है यहां पर कि बरसाना किए ये? आइए बाहर जाइए भाई, पिताजी बुला रहे हैं, जाइए बार बार लेके। तो पोर्क को ये बोलेंगे, फिर ऑमलेट, कितना अच्छा नाम लगता है ना ऑमलेट, पढ़ लीजिए है क्या वो, इट्स नथिंग बट द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड स्पाइस्ड एंड कुक्ड एंड गिवन एंड पीपल कंसिडर दैट इज समथिंग वेरी टेस्टी, संडे हो या मंडे। Some more deceptive terminologies. Horse racing. जुआ है उसको बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, horse racing के लिए मैं जाता हूं। Then, permit room. है ना? भारत में मतलब you are permitted to do that sin. तो उसको openly ये advertise नहीं करेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। फैशन शो इज नथिंग बट लस्टी मेन, दे ऑर्गेनाइज दिस फैशन शो ऑफ विमेन सो दैट दे कैन लस्ट अपॉन द फीमेल बॉडी, दैट इज नथिंग बट दैट। अब ये देखिए, ये जो इंग्लिश का वर्ड है गे, इसका एक्चुअल मीनिंग अगर लिटरल डिक्शनरी मीनिंग आप देखो, गे मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी चीयरफुल एंड वेरी प्लेजेंट, उसको गे बोलते हैं। बट दे विल नॉट कॉल ओ ही इज अ होमोसेक्सुअल, नो, ही इज अ गे, चीयरफुल, ही इज प्लेजेंट, एंड दैट्स हाउ इट इज डिसीव्ड। एंड अगेन illicit sex which is going on in living relationship is glamorized and it is not called anymore illicit sex, it is called live in relationship, that's it. So these are the defective terminologies which are used. इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि धर्म का अपमान और अधर्म का सम्मान, तो अधर्म का सम्मान वो लोग कैसे कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से पैकेज कर उसको एक सोफिस्टिकेटेड नाम देकर और ऐसे लोगों के द्वारा उसको करवाकर जो सेलिब्रिटीज हैं, तो सेलिब्रिटीज और जो इन्फ्लुएंशियल लोग वो लोग जब करते हैं तो फिर जन साधारण को क्या लगता है कि यदि मैं इस प्रकार का जीवन न जीऊं तो मैं पिछड़ा हुआ हूं, लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे. इफ आई वॉन्ट टू बी मॉडर्न आई हैव टू ईट दैट, आई हैव टू ड्रेस इन दैट वे, आई हैव टू टॉक इन दैट वे एंड आई हैव टू शो टू पीपल दैट आई एम ऑल्सो मॉडर्न, आई एम द मॉडर्न इंडियन. So that is the sorry state of affairs. And then we come to the point that according to Bhagavatam, especially in Kaliyuga, irreligion is categorized in 5 different ways. तो घबराइए मत, हम इसका discussion अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसको at length हम discuss करेंगे. What are the 5 branches of irreligions or 5 different kinds of irreligion? आज मैं सोचा था कि आज हमारा part 6 में ये श्लोक पूरा कर लेंगे, लेकिन part 7 तक अब ये हमारा discussion जाने वाला है. तो अगले बुधवार को हम 5 branches of irreligion भागवत के अनुसार क्या है, और फिर जो भगवान ने अंतिम लाइन कौन सी है, 2 शब्द आत्मानम सृजामि, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को. तो आज का हमारा जिस्ट ये समझ लीजिए, भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं केवल इसलिए नहीं आता कि जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं इसलिए भी आता हूं जब अधर्म का सम्मान होना शुरू हो जाता है. ये अर्थ है अभ्युत्थानम और ग्लानि इसका. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. जय श्री प्रभुपाद की.
हरे कृष्णा. कुछ महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार से है, आज का जो प्रसादम है वो श्रीमान नरेंद्र भोले प्रभु उन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. आज का जो स्वीट प्रसादम है वो हम स्पॉन्सर किया है हमारे आनंद फिरवानी प्रभु इन्होंने, क्योंकि उनकी जो बड़ी कन्या है, लड़की है, अवनी माता जी, उनका सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए है, वो है कार्नेजी मेलॉन जो US बेस्ड है और कतार में भी है, तो उसके लिए उनका सिलेक्शन हुआ है. कई लाख स्टूडेंट में से उसको एडमिशन मिलता है, तो इसके लिए उन्होंने आज का स्वीट स्पॉन्सर किया है. तो उनको भी हम शुभकामनाएं देंगे, प्रार्थना करेंगे, जहां भी कहीं रहे वो भारत की सेवा जरूर करते रहे. तो उनको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. और जैसे आपने देखा होगा जो हमारे मंदिर में जो वॉलपेपर्स लगे हैं, जैसे भगवान के यहाँ पे जो वॉलपेपर्स लगाए हैं वो हमारे दीपक सचदेव प्रभु इन्होंने खुद ने स्पॉन्सर किए अंदर के. तो अगर वो यहाँ पे है दीपक प्रभु, दीपक सचदेव प्रभु, तो 2 मिनट के लिए आप आगे आइए और एक छोटा सा उपहार मंदिर की ओर स्वीकार कीजिए. और इनको भी धन्यवाद देते हैं हम 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. और कल से हमारे मंदिर में योगा क्लासेस चालू हो रहा है जो सुबह 8 बजे से चालू होगा, और उसकी अधिक जानकारी 7 बजे से चालू होगा. जिसकी अधिक जानकारी टेंपल के नोटिस बोर्ड पे है, या आप जरूर कर पोस्ट संपर्क कर सकते हैं, और जिनको भी इस योगा क्लास में एडमिशन लेना है वो उसका लाभ उठा सकते हैं. और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं बुधवार कार्यक्रम के लिए, उनको अनुरोध करते केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए. जो भी भक्त आज हमारे बुधवार कार्यक्रम में पहली बार आए हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आपका कीमती समय निकाल के हमारे मंदिर में पधारे. हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राधा मदन गोपाल जी, गौरीता श्री प्रभुपाद जी और सारे वैष्णव से, कि आज जो आप यहाँ पे शाम को पधारे हैं तो आज से आपके जीवन में धर्म का सम्मान हो और अधर्म की ग्लानि हो और आपके पूरे परिवार को उसका लाभ हो। तो इन सबको धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल।